સમ્યક દર્શનના 8 અંગ. એ પ્રમાણે રાત્રિનો કાર્યક્રમ એમનો સ્વાધ્યાયનો એ રહેશે, અને રાત્રિનો કાર્યક્રમ આવતીકાલ સવારનો કાર્યક્રમ સવારે 6:40 થી 6:30 જીનેન્દ્ર સ્તુતિ સ્તુતિમંગલ, 6:40 થી 8 જીનેન્દ્ર અભિષેક તથા નંદીશ્વર વિધાન પૂજન, 8:15 પૂજ્ય ગુરૂદેવસિંહ સીડી પ્રવચન, 9:10 શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય શ્રી સંજયભાઈ દ્વારા ટોડલમલ સાહેબની રહસ્યપૂર્ણ તિથિ, ત્યારબાદ આપણે ઉપર જીન મંદિરમાં સમૂહ પૂજા, અને ત્યારબાદ આવતીકાલે સવારે જે ક્લાસ અહીંયા પાઠશાળા ચાલશે તેમાં સૌમિલભાઈ ત્રણ લોકની વિશે જે રચના છે તેને ભૂગોળ વિશે માહિતી આપશે, અને ઉપર બાળકોની પાઠશાળા, અને ત્યારબાદ અનિલ લીલા બિલ્ડિંગમાં સ્વામી વાત્સલ્ય ભોજન. તો દરેક મુમુક્ષુ ભાઈ બહેનોને આ દરેક પ્રોગ્રામમાં લાભ લેવા ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે. જય જીનેન્દ્ર.
નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરીયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોયે સવ્યસાહુડમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમો ગણી, મંગલમ કુંદકુંદાદ્યો, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ, સર્વ કલ્યાણકારકમ, પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ, જૈનમ જયતુ શાસનમ. મંગલ મે મંગલકરણ, બીત રાગ વિજ્ઞાન, નમો તાહિ જાતે ભઈ અરહંતાદિ મહાન. કરી મંગલ કરી હો મહા, ગ્રંથ કરન કો કાજ, જાતે મિલે સમાજ સબ, પાવે નિજ પદ રાજ. આગે થોડા સા લાઈન સે બેઠી, થોડા સા આગે આ જાઓ ભૈયા, પીછે વાલે થોડા ઇતની દૂર બેઠતી ના તો. અષ્ટાની કા મહાપર્વ આજ સે પ્રારંભ હો રહા હૈ. કાર્તિક ફાગુન સાળ કે અંત 8 દિન માહી, અને દેવતા ભી કાર્તિક મે, ફાગુન મે, ઓર અષાઢ માસ મે નંદીશ્વર દીપ જાતી હૈ. દીપ કહાં હૈ? દુનિયા તો બહુત બડી હૈ, સર્વજ્ઞ ભગવાન કે જ્ઞાન મે આયા હૈ. સર્વજ્ઞ ભગવાન કા એક ભી વચન અન્યથા નહીં હોતા. વો અકૃત્રિમ જિનબિંબો કે દર્શન કરતે હૈ ઓર અપના સ્વરૂપ નિહારતે હૈ. કલ્પના નહીં હૈ, યથાર્થ હૈ. અભી ભી આપ આંખ બંધ કરકે નંદીશ્વર દીપ દેખો તો આપકો પૂરા નજર આયેગા સ્પષ્ટ. પ્રશ્ન દૂરી કા નહીં હૈ, પ્રશ્ન વિશ્વાસ કા હૈ. અભી ભી બહોત દીપ એસે હૈ વર્તમાન વિશ્વ મે જિન્હે વિજ્ઞાન ખોજ નહીં પાયા. ઇસ અષ્ટાનિકા કે બાદ દશલક્ષણ પર્વ પ્રારંભ હો જાતા હૈ. જિનકો વિષય રસ હૈ, જગત કા રસ હૈ, उनको तो ये आफत जैसी लगती है, उनको लगता है इनके तो कभी प्रोग्राम ही खत्म नहीं होते। अभी अष्टानिका है, फिर 10 लक्षण है, बड़ी जान को फजीता है, क्या करें। लेकिन ज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये पर्व और धर्म आराधना सदा चलती रहे। विदेह क्षेत्र में आज भी सीमंदर प्रभु पूर्व दिशा में मुख करके विराजमान है, असंख्यातों जीव उनकी सभा में आ रहे हैं, वही सीमंदर प्रभु है, अभी बदले नहीं है। अभी जिस सीमंदर भगवान की सभा में गुरुदेव के जीव विद्यमान थे, वही सीमंदर भगवान की इतनी लंबी आयु है कि अभी आगामी 24 के जो 12वें तीर्थंकर होंगे तब तक वो अरहंत दशा में विद्यमान रहेंगे। भगवान की सभा में कोई जीव को खाने पीने की चिंता नहीं रहती। मैं एक बात कहकर प्रारंभ करूंगा विषय, क्योंकि वो भी समझने जैसा है। कोई यहां बैठा रहे और उसे व्यापार की चिंता सताती रहे, अथवा कहो जीएसटी की चिंता सताती रहे, तो उसको यहां समझ में नहीं आएगा। हरिवंश पुराण में एक ऐसी कथा आती है कि भगवान का समवसरण आया, युगमंदर भगवान की घटना है। तो एक दंपत्ति बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी धर्म पत्नी धर्म से विरोधी थी, और वो उनसे बोलता है भगवान का समवसरण आया है, दर्शन करने चलो। वो कहती मुझे तो घर चलाना है, आप जाओ, मैं नहीं जाती, तो मैं कुछ काम नहीं है, मुझे तो काम है। बहुत समझाया, नहीं मानी। वो खुद भगवान के समवसरण में जाता है, जाते समय वो ये कहती है कि टिफिन ले जाओ, मैं इंतजार नहीं करूंगी, तुम्हारा कुछ पता नहीं है कब आओगे। लेकिन अब जब विवाह किया है तो इसका अर्थ होता है भले ही वो विरोधी भाव वाली हो तो भी शांत रस से सहन करना। वो टिफिन ले गया, रास्ते में किसी जरूरतमंद को दे दिया। अब उस बावड़ी को ये नहीं पता कि जहां जन्म जन्म की भूख मिटती हो वहां टिफिन कौन लेकर जाएगा। वो भगवान के समर्पण में घुसा, त्रिलोकी नाथ की मुद्रा देखी, सच्ची घटना है, और शांत रस युक्त भगवान का जिनबिंब चेहरा देखा, युगमंदर प्रभु का देखकर अश्रु धारा बह गई। अरे प्रभु, आप अनंत रस आनंद भोगो और मैं अनंत कष्ट की आग में जलूं, ये मुझे सहन नहीं होता। बस वो घर का द्वेषी नहीं था, घर से विरक्त था। हम भेद ज्ञान के नाम पर द्वेष करते हैं, इसलिए भेद ज्ञान पोषण नहीं होता, द्वेष पोषण होता है जगत से। हम जगत से उदास नहीं है, जगत से निराश हैं। निराश और उदास में अंतर है, क्योंकि निराशा द्वेष को जन्म देती है और उदासी निर्जरा को जन्म देती है, उस स्वरूप के पास लाती है। भगवान को देखकर अंतर्मुख हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया। अनुभव बहुत सरल है, क्योंकि जो ज्ञान पर्याय है उसको त्रिकाल विश्राम स्थल मिल जाए, बस उसी का नाम तो अनुभव है। बस इतना ही था, और अब भगवान को देखकर उसने सोचा जब आत्मा का आनंद हो ही गया है तब घर की भट्टी में दोबारा क्यों जाना। वहीं वस्त्र उतारी, केस लॉन्च किया, मुनिराज बनकर बैठ गए। अब भगवान की तो दिव्य ध्वनि खिल रही, वहां तो भूख प्यास लगती नहीं। कई मुनि आते हैं जाते हैं, लेकिन मात्र 3 दिनों में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हरिवंश पुराण में इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भगवान से पूछा, प्रभु ये व्यक्ति अभी कल का साधारण व्यक्ति आपकी सभा में आया और इसने केवल ज्ञान ले लिया, क्या चमत्कार है। बोले ये जगत से विरक्त था, थका हुआ था। हम सच में थके नहीं जगत से, अभी हमारी चर्चा तो भगवान की है पर आसक्ति जगत में है, इसलिए मन में द्वेत पड़ा रहता है। इंद्र कौतूहलवश उसके घर गया और उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पति देव से मिलना है, कहां गए हैं। बोले 3 दिन से उन्हीं को रो रही हूं, पता नहीं कहीं खो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। बोले कोई भगवान आए हैं, उनके दर्शन करने गए, इन भगवानों को बोलो कि वो इतनी देर बैठा के रखेंगे क्या सामान्य घरगृहस्थी के लोगों को, कोई बात है क्या, हमें तो घरगृहस्थी चलाना है। तो इंद्र ने उससे कहा, वो तो वेश बदल के गया, इंद्र को करुणा थी, वो चाहता था कि ये भी धर्म में लगे। तो उसने कहा, बावड़ी जिस पति देव को तू गालियां दे रही है वो तुम्हारे पति भगवान बन गए हैं, वो स्वरूप ही नहीं जाने भगवान का। वो गुस्से में बोली, वो मेरे बिना पूछे कैसे बनेंगे, मैं चलती हूं उन्हें वापस लाती हूं। इंद्र आगे आगे, वो पीछे पीछे। समवसरण में जैसी पहुंची, पहली बार त्रिलोकीनाथ का वैभव देखा, देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसमें लिखा भक्तांबर में, मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टिसु येसु हृदयम त्वयि दोषमेति। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने पहले जगत को पूरा देख लिया, अब जब मैंने आपको देखा तो मेरे नेत्र अन्य जगह संतोष को प्राप्त नहीं होते। सर्वज्ञ को देखकर इंद्र बोले, देखो तुम्हारी पति भगवान बने बैठे। उसे सब रहस्य समझ में आ गया, इतनी रोई फूट फूट कर, अरे मुझे पता नहीं था मेरे घर में ही भगवान थे। लेकिन बोले, अब वो घर मुझे घर नहीं लगता, शमशान लगता है। वो इंद्र से बोली, अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी। उसने स्वयं सर्वज्ञ को देखा, देह से भिन्न राग से भिन्न आत्मा को निहारा, सम्यक दर्शन हो गया और अर्जिका बनकर उस सभा में, अर्जिका की कोठों में विराजमान हो गई। कल्याण होना हो तो इतना सी देर में हो जाता है, नहीं होना हो और उसे रुचि ना हो, जगत का आकर्षक पड़ा हो तो वो भगवान के समर्षण में भी जीव अनंतों बार हो आया। अभी जो गुरुदेव का विषय चला था उसमें अष्टपाहुड़ में 96 और 97 उसमें जो मुनिराज हैं कष्ट के समय भावनाएं भाते हैं, तो 25 भावनाओं का निरूपण होता है। कष्ट के समय अन्य समय नहीं भाते क्या, कि अन्य समय में भी भाते हैं लेकिन जिस समय तीव्र उदय आए बाहर में उस समय 12 भावना का चिंतन करते हैं। 12 भावना श्रावक को भी बताइए और मुनिराज को भी बताइए, बहुत अद्भुत निरूपण है। हमारे यहां अष्टपाहुड़ी चल रहा है अभी सभा में और भाव पाहुड़ पूरा हुआ है अभी। वो गुरुदेव का विषय बहुत अद्भुत है, ऐसा लगते सुनते ही रहो ऐसा। आज जो आपने ध्यान दिया होगा एक विषय विशेष बहुत आया, यदि वो विषय लेना हो तो सीधा वो भी लिया जा सकता है क्योंकि वो तो मक्खन है एकदम। हाँ, निर्जरा के विषय में आपने देखा होगा, निर्जरा तो उसमें 3 तरह से निरूपण किया निर्जरा का, जैसे गुरुदेव के एक एक शब्द का प्ररूपणा हो तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि 8 वर्ष के बच्चे को भी समझ में नहीं आए, हर किसी को समझ में आए ऐसा विषय है। तो अनादि से इस जीव ने शुभ भाव तो किया, अज्ञानी को क्या भ्रम है, शुभ भाव से अशुभ की निर्जरा होती है, पर ऐसा नहीं है, अशुभ कुछ समय के लिए मंद होता है, इसको अशुद्ध निश्चय ने से निर्जरा कहा जाता है। एक दूसरा, जो द्रव्य निर्जरा है, कर्मों की निर्जरा, वो तो पर द्रव्य है, उसको तो जीव कर नहीं सकता, वो असद्भूत व्यवहार से निर्जरा कही गई। कही गई है नहीं, कही गई है नहीं। और तीसरा, जो शुद्धोपयोग हुआ, शुद्धोपयोग हुआ, और शुद्धोपयोग से शुभ अशुभ भाव की निर्जरा हुई, वो खरेखर निर्जरा है। भैया समझ में आ रहा है? ये बारह भावना ऐसी है कि बारह दिन एक एक भावना का चिंतन करें तो घर मकान दुकान से वनवास लेना पड़े, ऐसा अद्भुत विषय है। अभी अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी अभी प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव श्री ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर तीन बार प्रवचन किए, तीन बार। अध्यात्म संदेश के नाम से प्रसिद्ध है। जब गुरुदेव के हाथ में ये चिट्ठी लेटर आया तो उनको इतनी महिमा आई कि टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये सूक्ष्मतम विषय है, सूक्ष्मतम। वैसे पत्र बहुत महापुरुषों के प्रसिद्ध हुए हैं। यदि पूर्व में देखें तो श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्र बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। कभी कभी जो काम व्यक्ति उपदेश से नहीं करता वो पत्र से हो जाता है। पत्र सबको नहीं लिखे जाती, पत्र जिससे आत्मीयता हो उसको लिखे जाते हैं। कृपालु देव के पत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। मेरे को सबसे पहले वो पत्रों की पुस्तक गांगजी भाई ने दी थी, वो आद्योपांत वो हमने पढ़े, और हर शनिवार को एक पत्र हमारी मंगलारतियों को पढ़ाता हूं मैं। बहुत वैराग्य है, 500 वर्ष की इतिहास में ऐसा वैरागी पुरुष नहीं हुआ। ऐसा वैराग्य रस है कि बाहर उपयोग जाए ही नहीं। आप जानते हैं ज्ञान और वैराग्य की संधि क्यों मानी है? कि हमको स्थूल ज्ञान में ये तो पता पड़ जाता है कि मैं देह और राग से भिन्न हूं, ऊपरी ऊपरी ज्ञान में, लेकिन वो ज्ञान विरक्त नहीं है बाहर से, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप में ठहरता नहीं है। बाहर से विरक्त हो तो ठहरे, अंदर आकर बाहर बाहर भागता है बच्चे की तरह। तो एक रहस्य, एक टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी प्रसिद्ध हुई। एक पंडित बनारसी दास जी के दो पत्र हैं, एक निमित्तोपादान चिट्ठी और एक परमार्थ वचनिका। ये भी अद्भुत पत्र हैं, इतने अद्भुत पत्र हैं कि निमित्तोपादान का चिट्ठी पढ़ो तो सारा रस निमित्त का ढीला पड़ जाए। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम क्यों रखा गया इसका? ये चिट्ठी का नाम टोडरमल जी ने नहीं रखा, ये मूलतः सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ये ढुंडारी भाषा में है, और ढुंडारी से हिंदी में अनुवाद बाद में हुआ, पहले इसका उर्दू में अनुवाद हुआ। वो उर्दू का ग्रंथ भी मेरे पास है, कि मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उर्दू मीडियम में हुई, तो मैंने पहले ही प्रारंभ में उर्दू में ही पढ़ा था पूरा ग्रंथ। इसका जो मूल ग्रंथ है वो मेरे पास रखा है अभी। और जो टोडरमल जी का मूल मोक्ष मार्ग प्रकाशक है माने ढुंडारी भाषा का है वो भी है, उसमें ये बाद में दिए गए हैं, ये हेडिंग बाद में दिए गई थी, ये क्योंकि हेडिंग ही नहीं थे उसमें, तो सीधा ग्रंथ था, पेज ही नहीं थे उसमें, कागज कहां था जो हेडिंग में बिगाड़ेगा आदमी, बाद में दिए गए। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी ये बाद में नाम दिया गया इसका। पत्र शुरू करते हैं समय को न गंवाते हुए, बहुत अद्भुत पत्र है, और अहो भाव से इसको सुनना, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, सब टोडरमल जी के हैं, और गुरुदेव श्री का पत्र में पूरा आद्योपांत पढ़ के आया हूं। जहां जहां हमें जरूरत होगी वो गुरुदेव श्री ने क्या कहा है वो विषय भी अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से लेंगे। ये आचार्य कल्प क्यों कहा गया है टोडरमल जी को? क्योंकि इन्होंने आचार्यों जैसा काम किया है। इंग्लिश बोलते हैं ये व्यक्ति ऐसा लाइक ए किंग, ये आचार्य जैसा काम किया है। आयु बहुत अल्प रही, मात्र 47 वर्ष, 43 या 47 मानिए टोटल आयु टोडरमल जी की। इतनी कम आयु में कोई व्यक्ति जितना 500 वर्ष में काम करता है, इतना काम किया है, मतलब कल्पना से बाहर है। और आज यदि टोडरमल जी ना होते तो आपको हम सच कह रहे हैं कि आज दिगंबर तेरे पंत धर्म डूब गया होता, क्योंकि उसकी सुरक्षा करने वाले वो ही थे। टोडरमल जी को जिस दिन मृत्यु दंड मिला, वो पूरी कथा किसी दिन समय होगा तो मैं आपको सुनाऊंगा, तो जिस दिन मृत्यु दंड मिला, वो उन्होंने किसी सत्य के विषय में कहा, अन्य मत के विषय में, पहले तो राजतंत्र था, तो राजा को भड़का दिया। राजा कच्चे कान के होते थे कि देखो इन्होंने ये निंदा की है इस मत की। उन्होंने टोडरमल जी को बुलाया और उनसे कहा, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तुम जैसा कोई सज्जन नहीं है जगत में, मैं नहीं चाहता तुम्हें मृत्यु दंड दूं, पर तुम ये कह दो कि जो तुमने कहा है वो असत्य है। टोडरमल जी बोले, राजन यदि टोडरमल प्राणों के व्यामोह में आकर सत्य से मुकर गया तो आगामी आने वाला काल ये कहेगा, सर्वज्ञ का पुत्र देह की सुरक्षा में सत्य से मुकर गया, तुम भले ही शरीर के सहस्र खंड करो या कुछ भी करो, हमने जो कहा है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार कहा है। वो टोडरमल जी को मृत्यु दंड हुआ, जो कथा मिलती है। उस दिन जयपुर नगर में लोगों के अंदर चूल्हे नहीं जले घरों में कि टोडरमल जी को मृत्यु दंड हुआ, दीपक नहीं जले घरों में कि अरे हमारे महागुरु टोडरमल जी इस कली काल की इतिहास का काला पन्ना वो, कि जिस दिन टोडरमल जी जैसे महापुरुष को मृत्यु दंड दिया गया, दीप नहीं जला लोगों की। पर जैन लोग तो अहिंसक हैं, वो किसको क्या कहें। उन्होंने भी अपने अनुयायियों को कह दिया था, आप शांत रहना, हमारी आयु का यही समय है, बस देह पृथक हो रहा है। उस हाथी को भी ये कहा, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। उस महापुरुष का पत्र है ये, और हमारा भाग्य है कि ऐसे दुष्म काल में हम ऐसे महापुरुष का पत्र पढ़ रहे हैं। ये बहुत अद्भुत पत्र है, ये साधारण नहीं है, और अष्टानिका जैसा पर्व है। घर जाकर सब पढ़ना ठीक है, भी सबके जैसे उदय हैं, एक एक दो दो घंटे पढ़ना, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना। हम चाहते हैं कि 8 दिन में ये बिल्कुल आपके घरों में भी यही वातावरण हो जाए, आपस में आप यही चर्चा करो टोडरमल जी की, जो बात मुख से नहीं कही जा सकती, साधारणतः चर्चा भी नहीं कर सकता, वो बातें हैं इसके अंदर। अंदर अनुभव के काल में अनुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष, वो चर्चा है, जिसमें प्रश्न उठना भी व्यक्ति को बहुत मुश्किल है। वे अनुभव क्या चीज है, प्रत्यक्ष क्या चीज है, परोक्ष क्या चीज है, सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती है, परिणत सम्यक दृष्टि का सविकल्प काल कैसा होता है, सम्यक दृष्टि का निर्विकल्प काल कैसा होता है, वो अद्भुत चर्चा है इसके अंदर। देखो कोशिश ये रहेगी मेरी कि संक्षिप्त में 8 दिन में पूरा विषय हो जाए, संक्षिप्त में, विस्तार से तो महीनों लगते हैं। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान विषय स्वधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी गंगाधर जी श्रीपाल जी सिद्धार्थ दास जी आदि सर्व स्वधर्मी योग्य लिखी टोडरमल जी ना श्री प्रमुख विनय शब्द अवधार जो, आप क्या बोलते ना आव जो, तो अवधार जो, जिस पत्र कहां लिखा गया, ये उत्तर कहां भेजा, जल्दी बोलो, मुल्तान नगर जो आज पाकिस्तान में है, मुल्तान नगर। मुल्तान नगर की भी एक घटना और प्रसिद्ध है, आपको पता होगी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ उस समय पवन जी के पिताजी भी पाकिस्तान में थे, लाहौर में। वो वहां से वो छोड़कर आई थी, वो बुलंदशहर में व्यापार किया बाद में। उस जमाने में तो वहां मंदिर तोड़े गए अपने, तो जैनियों का तो पुण्य ही बहुत होता है, और जिसके सर पे सर्वज्ञ बैठे हो उसका बाल वाका कौन कर सकता है। लोग हवाई जहाज में कपड़े नहीं लेकर आए, घर के लत्ते नहीं लेके आए, सोना चांदी नहीं लेके आई, एक एक सूटकेस में प्रतिमा छिपा छिपा कर लाई, बड़े बड़े सूटकेस में। और वो आज भी मुल्तान जयपुर के आदर्श नगर के मंदिर में स्थापित है वो प्रतिमाएं। अरे हमारे सर्वज्ञ भगवान है वो मुल्तान नगर में उस समय सब साधर्मी रहते थे, वो ये उनके नाम है। और सुनना, जिस नगर में साधर्मी विराजमान हो उसको क्या कहा, महाशुभ स्थान। क्या कहा? मुझे तो कभी कभी विचार आता है, आप लोग भी यात्रा पर जाते हैं, हम भी यात्रा पर जाते हैं, और कहीं किसी की दुकान पर या घर में गुरु कृपा कहान कृपा कुछ ऐसा लिखा हो, तो उस घर में हम ऐसे घुस जाते हैं जैसे हमारा जन्म जन्म का नाता हो। ऐसा लगता है कि ये भावी सिद्ध यहां रह रहे हैं। तो जहां साधर्मी विराजमान हो उसको शुभ स्थान कहते ही कहते हैं, उससे बड़ा और शुभ स्थान कौन सा होगा। और जहां साधर्मी या तत्व चर्चा करने वाले लोग नहीं है, वो मलेच्छ खंड है, वो छोड़ने योग्य है, ऐसा है। और साथ में कहा, टोडर मल जी के प्रमुख विनय शब्द अवधार जो, इनके लिए कह रहे हैं, खानचंद जी को, गंगाधर जी को, श्रीपाल जी को। टोडर मल जी बहुत बड़े विद्वान थे उस जमाने में। टोडर मल जी ने समय सार की आत्मख्याति टीका डायरेक्ट पढ़ी थी संस्कृत से। गुमट सार कर्म कांड, गुमट सार जीव कांड जैसे ग्रंथों की बचनिका लिखी। अभी तो हमें हिंदी अनुवाद मिल गया, गुरुदेव का प्रवचन मिल गया, उनको तो ये कुछ भी प्राप्त नहीं था, कुछ भी। ऐसे महान विद्वान अपने श्रोता को, साधर्मी को क्या लिख रहे हैं कि हमारी विनय स्वीकार करो। निर्माणता देखो कितनी है, कितनी निर्माणता है, हमारी विनय स्वीकार करो। अच्छा ये पत्र कहां से लिखा गया, ये भी तो समझ में आना चाहिए। बोलो सिंघाड़ा, जयपुर के पास एक सिंघाड़ा गांव कस्बा समझ लीजिए, वहां पर ये मुनीमगिरी का काम करते थे एक सेठ जी के, बहुत सज्जन थे सेठ भी, वहां से ये पत्र लिखा गया। अब आगे, अहीं यथा संभव आनंद छे। देखो एक एक वचन क्या गजब का है, ये नहीं लिख रहा मजामा ही मजामा, यथासंभव आनंद कहकर इस पत्र से ऐसा प्रतिफलित होता है जैसे जितना टोडरमल जी की कसाय गई, तो टोडरमल जी ये बताना चाहते हैं कि हमारी जितनी कसायों का अभाव हुआ है उतना आनंद है, और जितनी कसाय है उतना दुख है। इस शब्द से ज्ञात होता है कि टोडरमल जी ज्ञानी थे। किसी मूर्ख से पूछो कैसे हो तो वो कहेगा सब मजे में, आनंद ही आनंद है। यहां यथासंभव आनंद है, एक एक शब्द नपात तुला है। तमने चिदानंद घनना अनुभव थी, सहजानंदनी वृद्धि चाहूं छू। जिसको जो अच्छा लगता है वो अपने मित्र के लिए वही चीज प्रस्तुत करता है, यानी तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि हो। इस लाइन में तो पूरा समय सार आ गया। चिदानंद घन कहकर क्या कहा, जल्दी बोलो। ध्रुव शुद्धात्मा, जिसकी 45 वर्ष तक गुरुदेव श्री ने दृष्टि के विषय की चर्चा की। चित आनंद घन, तीन शब्द है इसमें, चित आनंद घन। चिद कहकर यह कह दिया कि मैं अकेला त्रिकाली नहीं हूं, कुछ त्रिकाली तो छह द्रव्य है, लेकिन चित्त रूप घन कहकर यह कह दिया कि मुझ में कुछ प्रवेश नहीं होता, ठोस हूं, और अकेला चित्त नहीं हूं, आनंद सहित चित्त हूं। आत्मा में अकेला ज्ञान ही ज्ञान होता और आनंद ना होता तो उस आत्मा की क्या वैल्यू थी? कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहूं छू। सहज आनंद कहकर क्या कह दिया? पर्याय में तुम्हारे वो आनंद उत्पन्न हो, लेकिन वो सहज आनंद हो स्वरूप के आश्रय वाला। इस लाइन से भी ये ज्ञात होता है कि टोडरमल जी महाज्ञानी थे, क्योंकि उनको चिद घन का स्वयं को अनुभव था और अपने श्रोताओं को भी उस अनुभव हो और आनंद हो ऐसी भावना पाते हैं। अरे चारों तरफ देखो, विश्व में विषय कसाई की आग लगी है चारों तरफ। विश्व तीसरे विश्व युद्ध के निकट है दुनिया। जब ज्यादा राष्ट्रीयता सर पर हावी होती है तब युद्धों को जन्म होता है। आज चारों तरफ लोग कह रहे हैं विकास है विकास है, विकास नहीं है। ये 250 वर्ष पूर्व जब कहीं आने जाने का साधन नहीं था, कोई अंग्रेज तो उसके बाद आई। टोडरमल जी का वो जमाना था जब मुगलों का शासन था। बनारसी दास जी उनसे भी पहले हुए 150 वर्ष पूर्व। उस समय ये तत्व चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उनको कैसा परम सत्य प्राप्त था जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। ये चर्चा क्या, ऐसे शब्दों से भी परिचय नहीं है लोगों को, ऐसे शब्दों से भी ऐसी अद्भुत बातें हैं। सहजानंदनी वृद्धि चाहूं छू, ये नहीं लिखा कि तुम्हारे लौकिक आनंद हो। अपने सोगानी जी साहिब के भी पत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, तो मैं तो उनका दीवाना हूं पत्रों का। वो पुस्तक ही साथ लेके चलता हूं, एक पत्र पढ़ ले व्यक्ति का पूरी जिंदगी का डिप्रेशन खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे पत्र हैं एक एक पत्र। तो एक पत्र में एक भाई जी ने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि 33 रुपया उधार लेके सोनगढ़ गए थे। जिस स्थान पे वो कमरे में बैठ के आत्मा की चर्चा करते थे बंद करके, उसमें 3 साल पाठशाला चलाई है हमने अजमेर में। वो सोगानी जी साहिब को किसी ने पत्र लिख के भेजा, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? अजमेर के बाद वो कलकत्ता आ गए थे। तो वो पत्र के उत्तर में ही लिखकर भेजते हैं, तुम जैसे साधर्मी से हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि ये लौकिक वार्ता करके हमारा और अपना समय नष्ट करेंगे। ऐसा पत्र, इतनी बाहर में इतनी प्रतिकूलता और अंदर ध्रुव की ऐसी लगन कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनका परिचय भी जीवन परिचय समझने जैसा है। उनके पुत्र रहते हैं यहां पर मुंबई में, अशोक जी, मैंने उनको बोला है कि आप यहां आना, उनको भी बहुत रुचि है, दूर पड़ता है थोड़ा यहां से। सहजानंदनी वृद्धि चाहूं छू बीजू, तुम्हारो एक पत्र भाई श्री राम सिंह जी भवानी दास जी ने आव्यो हतो। ये पत्र माने प्रश्न डायरेक्ट नहीं आया टोडरमल जी पर, कोई डाक तो थी नहीं, स्पीड पोस्ट तो थी नहीं कि जो डायरेक्ट भेज दे। एक एक पत्र दो दो तीन तीन महीने में आता था। ये गांव वाले ने दूसरे गांव वालों को भेजा, वो गांव वाले उस प्रश्न को पढ़ के दूसरे गांव वालों को भेजते थे, फिर जाकर वो पत्र पहुंचता था। कैसा, तीर्थ यात्राएं भी उस समय ऐसी होती थी, जो तीर्थ यात्रा पर जाए उसका तिलक लगाकर बैंड बाजे से स्वागत होता था कि जैसे ये समाधि लेने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं कि वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, वो अलग ही महिमा थी। तेना समाचार जहानाबाद थी अन्य स्वधर्मियों लख्या था। उन जो जहानाबाद पास में है जहां टोडरमल जी रहते थे, वहां वो पत्र आया। उन साधर्मियों ने टोडरमल जी को बताया कि ये मुल्तान नगर से ये प्रश्न आया है और इसका समाधान आप ही कर सकते हो, और वो लोग बहुत प्यासे हैं, आपसे प्रश्न का समाधान चाहते हैं। अभी ये उत्तर शुरू नहीं हुआ, अभी तो ये प्रसंग चल रहा है, आज तो ये पहला दिन इसी में निकल जाएगा। भाई श्री आवा प्रश्न तमारा जीवाज लखे। आवा प्रश्न, ऐसे प्रश्न तुम जैसे लोग ही लिख सकते हो। ये टोडरमल जी प्रश्न लिखने वाले को कह रहे हैं। हम लोगों को अनाप शनाप प्रश्न तो बहुत होते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं। मैं तो युवाओं से बहुत जुड़ा हूं, यूनिवर्सिटी में भी जो लड़के लोग हैं उनको पढ़ाने जाते हैं कभी कभी क्लासें लेने, सबको यही प्रश्न होते हैं। तीर्थंकर होते हैं, 15 मास रत्नों की वर्षा होती है, वो रत्न कहां गई? एक बार बाबूजी से पूछा था युगल जी से किसी ने प्रश्न कि एक एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, एक टाइम में 3.5 करोड़, एक दिन में 14 करोड़, और उन 14 करोड़ रत्नों एक वर्ष को दिन में कन्वर्ट करो, फिर उनको 15 महीने में कितने दिन हुए और इतने 24 तीर्थंकरों में कहां गई? तो बाबूजी ने उत्तर दिया युगल जी बाबूजी ने कि तू डाकू है क्या, चोर है क्या, तुझे ये प्रश्न नहीं हुआ कि वो तीर्थंकर कहां गई, वो आराधना करके प्रभु कहां गई, वो प्रश्न उसको नहीं होता। और उसको ये प्रश्न होता है ऐसे बिना शनाप के प्रश्न, बिना कि विज्ञान ने सब कुछ खोज लिया, कहीं कोई नंदीश्वर नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं, कैसी बातें करते हो, हथेली पे दिखा दे, हथेली पर ऐसा। अभी तो मैंने विषय दूसरा चुना है, आप विश्व के साइंस का कोई भी सिद्धांत बताओ, हम आपको ये बता देंगे कि जिनवाणी में यहां से लिया गया है। आप भेजो, आप मुंबई के, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ा हो, चाहे वो फिजिक्स पढ़ा हो, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ा हो, चाहे वो कंप्यूटर पढ़ा हो, चाहे वो भूगोल पढ़ा हो, विश्व का कोई भी ज्ञान जिनागम से बाहर नहीं है, जिनागम से बाहर। अरे प्रवचन सार में सोना बनाने की विधि आई है, पढ़ाया आपने प्रवचन सार गुरुदेव ने, मूल मूल गाथा में आया है, मूल गाथा में नागफणी की, नागफणी एक वो होती है कोई एक औषधि, उसमें एक विशेष मिश्रण बनता है तो धरती में सोना पैदा हो जाता है। लेकिन बाद में दूसरी गाथा और लिखी प्रवचन सार में, लेकिन पुण्यवान को मिलता है। मैं दिखाऊंगा आपको वो, आप जानते परमाणु बम का आविष्कार अपनी धवला के एक बिंदु से हुआ है। धवला में पुद्गल के विषय में एक ऐसा वर्णन आता है, गोमट सार वगैरह में भी आता है, यदि एक स्कंध, स्कंध होता है ना परमाणु, और फिर स्कंध सूक्ष्म स्कंध का विस्फोट किया जाए तो उसमें से इतनी ऊर्जा निकलती है कि कई योजन जलकर भस्म हो जाए, केवल एक सूक्ष्म स्कंध। तो ऊर्जा का सूक्ष्मीकरण, इसका नाम है परमाणु, और ये जैन शासन से गया। लेकिन हमारे आचार्यों ने उसमें दिमाग नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि उससे आनंद नहीं विनाश होगा, पुद्गल की खोज से मुझे सुख मिलने वाला नहीं। वो भगवान के ज्ञान में तो आया है सारा विषय, सारा विषय आया है। तो इसी टोडरमल जी कहते हैं कि अन्य तरह के प्रश्न तो अन्य जीवों को उठ सकते हैं, लेकिन आवाज प्रश्न के अनुभूति के काल में आत्मा प्रत्यक्ष है या परोक्ष, ये प्रश्न करने वाला भी कोई व्यक्ति साधारण हो सकता नहीं, ये प्रश्न कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये चलते फिरते का प्रश्न नहीं है। ये जो बहुत धीर वीर गंभीर होगा, जिसे आत्मा का अनंत महिमा आई होगी, अरे गुरुदेव को चारों नियोग का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने द्रव्यानुयोग मुख्य क्यों रखा? क्योंकि ये कल्याण के अत्यंत नजदीक है, आयु थोड़ी है, जंजाल ज्यादा है, अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है इस काल में कि हम अप्रयोजन भूत विषयों में बहुत समय लगाते रहें और प्रयोजन भूत विषय छोड़ दें। टोडरमल जी तक ने सभा में द्रव्यानियोग की बांच न हो ऐसा आदेश दिया है, पढ़ लेना आप 8वें अधिकार में, टोडरमल जी ने मोक्षवार प्रकाशक में। तो आवाज प्रश्न तमारा जेवाज लखे, आ वर्तमान कालमा अध्यात्म रसना रसिक जीवो बहुज थोड़ा छे। अध्यात्म रस की रसिक थोड़े, मुझे कभी कभी विचार आता है, हमें ये मन में टीस होती है कि ये अध्यात्म रस, अध्यात्म को समझने वाले लोग कम क्यों हैं, कम क्यों है, ये टीस होती है। ये टीस होना भी मुझे थोड़ा सा अध्यात्म के विरुद्ध लगती है। क्यों लगती है? जैसे मान लो आपके गांव में 4 करोड़पति हो या 1 करोड़पति हो, तो वो ये सोच करके मैं ही करोड़पति हूं, ये सोचकर वो खुशी होगा या दुखी होगा? अरे नहीं आया समझ में बात। तो वो ये सोचेगा कि सब करोड़पति हो जाएं, लेकिन हमें ये सोचकर दुख क्यों होता है कि जगत में अध्यात्म रस के रसिया थोड़े क्यों हैं? क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, इसे हर कोई पचा सकता नहीं है, नहीं पचा सकता। ये कर्णन युग में बहुत बड़ी बात आई है समझने जैसी कि इस कली काल में चक्रवर्ती क्यों नहीं होता, भरत चक्र चक्रवर्ती क्यों नहीं होते, बताओ। सब ग्रंथों में आया है कि चौथे काल में ही होते हैं, तो ये तो ग्रंथों की भाषा हो गई, इसकी भाव भाषणा नहीं हुई। इसकी भाव भाषणा सत्य क्या है? ऐसे उदय को पचाने के कलेजे वाला कोई नहीं है। माने चक्रवर्ती में दोनों गुण हैं, वो ऐसे उदय को पचाता भी है और ऐसे उदय को ठोकर भी मार सकता है। 6 खंड को 1 क्षण नहीं लगती, भरत जी को 6 खंड छोड़ने में 1 क्षण नहीं लगा, 1 क्षण नहीं लगा। पत्नियों को कह के नहीं गए कि हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, वो तो प्रतिदिन की भांति अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में सामायिक करते थे, भरतेश वैभव पढ़ो, आकाश में उड़ो, आपको ऐसा लगे क्या गजब के जीव थे, क्या क्या कमाल किया है ऐसा करके। तो ऐसे उदय को पचाने की ताकत नहीं थी। तो इस काल में तीर्थंकर है नहीं, सौधर्म इंद्र है नहीं, वर्तमान में आचार्य सब चले गए जितने थे, और अब इस वर्तमान काल में ये तो कहो, ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि हर 500 वर्ष में धर्म बढ़ेगा और फिर 500 वर्ष में घटेगा, फिर 500 वर्ष में बढ़ेगा, फिर 500 वर्ष घटेगा। ये ऐसा नहीं घटता एकदम, ऐसे ऐसे धीरे 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 फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो जो बनारसी दास जी का समय था, टोडरमल जी का समय था, जो मुगलों का काल चल रहा था, वो घटने का था, और आज गुरुदेव की कृपा से 500 वर्ष बढ़ने वाले चल रहे हैं। ये सच्ची बात है, आप करना नियुक्त पढ़ो आप। ये इस काल में टोडरमल जी कह रहे हैं कि इतने ही जीव हैं जिन्होंने प्रश्न लिखा है अध्यात्म रसम का, और आज तो भाग्य है कि घर घर में ये तत्व की चर्चा चल रही है, शुद्धात्मा बच्चे बच्चे शुद्धात्मा बोल रहे हैं। तो देखो वर्तमान काल में अध्यात्म रसना रसिक जीवो बहुत थोड़ा छे, 250 वर्ष पूर्व की बात। और गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ोगे तो गुरुदेव बोलेंगे 200 वर्ष। धन्य छे तेमने जे स्वानुभवनी वार्ता पर करे छे। मुझे तो कभी कभी ऐसा विचार आता है, घर में सास बहू में भी चर्चा हो तो स्वानुभव की हो, चौके में यदि बहु रानी भोजन बना रही है तो सासू ये चर्चा करे और ये पूछे उससे कि बिटिया आज तुमने स्वानुभव की बात सुनी कि माँ सब्जी बिगड़ जाएगी, कि यदि अनुभव के लिए सब्जी भी बिगड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। माने हमारा लक्षण ऐसे हो कि हम मोक्ष बाद में जाएंगे, पहले अपने घर को सर्वार सिद्धि बनाएंगे, घर घर में ऐसा वातावरण हो, घर में ऐसा वातावरण हो। अभी घर तो नरक हो रहे हैं और स्वाध्याय भवन में हम उत्कृष्ट चर्चा सुन रहे हैं। सच बात तो यह है कि स्वाध्याय ये जिनवाणी की प्रयोगशाला पूरा विश्व है। आप यहां से पढ़कर निकलो तो आपको जर्रे जर्रे में जिन शासन नजर आएगा। दार्शनिक और साधारण व्यक्ति में अंतर यही है कि दार्शनिक व्यक्ति पूरे विश्व के जर्रे जर्रे को हर चप्पे चप्पे में जैन दर्शन नजर आएगा। आप रेलवे स्टेशनों को देखो तो आपको पुण्य पाप के दर्शन नजर आएंगे। अब देखो किसी का पैर कटा है, कोई मांग रहा है, कैसी कैसी दशाएं हैं लोक में, हर जगह आपको जैन दर्शन नजर आएगा, हर जगह जैन दर्शन नजर आएगा। इसलिए घर को आप आत्मज्ञान की प्रयोगशाला बनाओ, अपने घर को आत्मज्ञान की प्रयोगशाला। फिर आप जब अपने घर में घुसेंगे तो जैसे अपन स्वाध्याय भवन में घुसते हैं तो ऐसा भाव आता है कि अच्छी जगह प्रवेश किए हैं, लेकिन घर में घुसते हैं तो ऐसा भाव नहीं आता। उस दिन शुभ लक्षण होगा इस चिट्ठी पढ़ने का रहस्य, कि जिस दिन घर में घुसे तो ऐसा लगे कि अपनी तत्व ज्ञान की प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। वो करते थे प्रयोग ऐसा भरत चक्रवर्ती, बताऊंगा आपको शाम को, बस ये लाइन पूरी करता हूं। घड़ी का समय पता नहीं पड़ता, दूर है। तेमने जे स्वानुभवनी वार्ता पर करे छे एज बात कहे छे, यही बात किसमें कही है जल्दी बताओ, गुरुदेव को प्रिय श्लोक था ये पद्मनंदी पंचविशित का प्रवचन है गुरुदेव श्री के। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, मिलकर पढ़िए सभी, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पिहि श्रुता निश्चितम से भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जे जीवे प्रसन्न चित्त थी, गुरुदेव के प्रवचन में प्रश्न उठाया है शिष्य ने कि क्या हमने आज तक सिद्धात्मा की बात नहीं सुनी है क्या? बोले सुनी है पर प्रसन्न चित्त थी ना सुनी, सुनी तो है पर प्रसन्न चित्त से नहीं सुनी। प्रसन्न चित्त किसको कहते हैं? जिसका प्रेम हो व्यक्ति को, उस चीज को व्यक्ति प्रसन्न चित्त से सुनता है। दो बच्चे यहां खड़े हों छोटे छोटे, साइकोलॉजी के प्रयोग है बहुत छोटे छोटे, साइकोलॉजी यदि आपको समझ में आ जाए ना मनोविज्ञान, तो अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाए। दो माँ भागी भागी आए वहां से और दो माँ के बच्चे हैं, तो माँ अपने अपने बच्चों को पकड़ेंगी या दूसरे को पकड़ेंगी? क्योंकि उससे प्रेम है। एक बच्चा सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कई बच्चे प्रयोग हो रहा है और नीचे माए खड़ी है सब बच्चों की, और किसी बच्चे का पैर खिसकने वाला है तो सबसे पहले कौन भागेगी? उसकी माँ। दूसरी को भी लगेगा लेकिन उसके चेहरे पर कुछ लगेगा नहीं ज्यादा, लेकिन जिसकी माँ है वो उसको ऐसा लगेगा कि उसका जीवन नष्ट हुआ एकदम। तो जिससे जिसको प्रेम होता है उसको वो प्रसन्नता से सुनता है। हमें जगत का प्रेम है तो हम जगत की बातों को प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं, लेकिन जिसको शुद्धात्मा से प्रेम हो जाए तो उसको प्रसन्न चित्त से सुनता है। इसका कल अर्थ करेंगे। सामली छे बात सामली छे ते भव्य पुरुष भविष्य मा थनारी मुक्ति नो निश्चय थी पात्र थाई छे। निश्चय से पात्र है वो, उसे वर्तमान में इतना आनंद आ रहा है। सौगानी जी से प्रश्न किया, भाई श्री आपको अभी चौथे सम्यक्त्व के काल में ही इतना आनंद आ रहा है, तो जब तुमको मोक्ष होगा तब क्या होगा? वो क्या उत्तर देते हैं, तुम्हें ये चिंता है कि हमें मोक्ष होगा तो क्या होगा, और हमें ये चिंता है कि हमें मोक्ष हो गया तो उसे रखेंगे कहां? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अतृप्त माने मिथ्या दृष्टि और तृप्त माने सम्यक दृष्टि। यदि इच्छा है तो कैसा पूर्ण में, और यदि पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों? नहीं आई समझ में बात? यदि इच्छा है तो मैं कैसा पूर्ण? मैं कहता हूं मैं पूर्ण हूं, भीख कौन मांगेगा? जिसके घर में नहीं होगा, जिसके घर में चांद होगा वो सितारे को क्यों देखेगा? तो जब मैं पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों, और फिर इच्छा है तो कैसी पूर्णता? सच बात तो यह है कि कोई भी ज्ञानी मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं करता, वो तो चिदानंद घन में बैठ जाता है। मुक्ति तो उसको फ्री में मिलती है, गिफ्ट में। सच पूछा जाए तो ज्ञानियों के रहने का स्थान मोक्षपुरी है, वो मोक्ष नहीं चाहते। यदि मोक्ष की इच्छा, फिर से सुनना, मोक्ष की इच्छा मुक्ति के विरुद्ध पुरुषार्थ है। ये बाबूजी युगल जी ने एक लेख में ऐसा लिखा है, मेरे प्रथम गुरु वही है, उन्हीं ने ही गुरुदेव का परिचय कराया, युगल जी बाबूजी ने। हम कोटा गए तो उन्होंने बोला कि आपने गुरुदेव को पढ़ा है क्या? हम तो बहुत छोटे छोटे थे, हमने कहा हमने तो नहीं पढ़ा। तो उनका एक लेख है, सम्यक दर्शन की इच्छा मिथ्या दर्शन का विषय है। क्या कहा? सम्यक दर्शन की इच्छा मिथ्या दर्शन का विषय है। तो सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन में ज्ञायक होता है। तो सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानता, सम्यक दृष्टि अपने को त्रिकाल ज्ञायक मानता है। इसलिए छपक श्रेणी में कोई भी मुनिराज ऐसा विकल्प नहीं करते कि मुझे मोक्ष जाना है, बल्कि छपक श्रेणी किसको कहा कि जहां उपयोग निर्विकल्प होकर स्वरूप में ऐसा समा गया, मैं ज्ञायक हूं ये विकल्प भी पूर्व में होता है। इसलिए श्रेणी में विकल्प नहीं है, बल्कि जिसका विकल्प है उसका भोग है। ये आगे आएगा, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का मूल हार्द है, जिसे सुन के आदमी दीवाना हो जाए, घर में भोजन वोजन छोड़ के इसी को करने बैठ जाए जाकर, आज तो मैं मोक्ष लेकर ही उठूंगा। अरे मोक्ष लेके उठूंगा ये भावना तो हो सकती है पर पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि मोक्ष लेके वो उठेगा कि जिसे बाहर में मोक्ष के बिना अपने को अपूर्णता लग रही हो, लेकिन वो तो वर्तमान में ही पूर्ण है। इसलिए पूर्णता में बैठना ये मोक्ष की भावना है। अकेले मोक्ष की भावना भाए और पूर्णता का अनुभव नहीं किया हो तो भावना सांची नहीं है। भविष्य में थनारी मुक्ति नो निश्चेती पात्र थाए छे, अर्थात ते जरूर मोक्ष मा जाए छे। इसकी चर्चा अपन एक एक, मैं सोच के आया था कि एक पेज आज पूरा हो जाएगा, और मेरी ये नेचर है कि कोई भी विषय हो तो अपूर्ण ना हो। भाई कोई आपका ऑपरेशन करे डॉक्टर और पेट खोल के छोड़ दे और बाद में ये कहे कि कल सिलूंगा, तो मेरी ये भावना है कि ये 8 दिन में ये विषय भले ही संक्षिप्त में करें, फिर विस्तार से तो भाई जी यहाँ आते हैं, हेमंत भाई जी, ये गुरुदेव का प्रवचन है तो वो आप पढ़ और सुन सकते हैं। रात्रि कालीन जो यहाँ आयोजकों से चर्चा हुई मेरी, विषय तो आप जो चाहें, चाहे तो द्रव्यानियोग, चाहे तो कर्णानियोग, चरणानियोग, जो भी चाहें विषय वो ले सकते हैं, पर मेरी जो फोन पे चर्चा हुई थी सम्यक दर्शन के 8 अंग, रतनकंड श्रावकाचार, वो भी प्रभाकर आचार्य की टीका से, सम्यक के 8 अंग और उसमें कथा सहित, तो मेरी ये भावना है कि जितने युवा लोग हैं भले ही उन्हें ऑफिस जल्दी छोड़ना पड़े, ये तो जुलाई का समय चल रहा है, वैसे अब मान लो आप ऐसा समझ लो 8 दिन ऐसी बारिश आए कि आप बाहर नहीं जा सकती, तो आप घर में रहोगे नहीं रहोगे? आपकी मुंबई में हुआ था ना एक बार ऐसा, ऐसा हाँ भाई, कोई, मैं तो कहता हूं कोई दम नहीं है। वो आप पढ़ेंगे तो 8 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों को सबको समझ में आएगा वो विषय, संध्या काल वाला, ये विषय भी वैसे समझ में आएगा वो, मतलब मेरे अंदर निशंकता कैसी हो। अभी हम क्या ढुलमुल लोटा हो रहे हैं, एक मिनट में कोई विज्ञान की प्रशंसा करे तो हम कह देंगे हाँ विज्ञान सत्य है, हम कहेंगे जैन धर्म सत्य है कि हाँ जैन धर्म सत्य है, हम कहें दोनों ही सत्य नहीं है तो दोनों ही सत्य नहीं है, तो भी तुम्हारा फिर क्या निर्णय है। ऐसी निशंकता हो, ऐसी निशंकता, ऐसा लिखा टोडर में उन्होंने सदा सुखदास जी ने कि शरीर के कोई सहस्र खंड कर दे तो भी मेरु की तरह चल रहे, कि नहीं जिन शासन परम सत्य है, जिन शासन ऐसी, तो बाहर में उसको निशंकता होती है और अंदर स्वरूप के विषय में निशंकता, तो अंजन चोर को निशंकता कैसे आई और वो मोक्ष कैसे गया, गुरुदेव श्री ने आज नाम लिया था। पूर्व में तो केवल निशंकता थी, सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो पूर्व के परिणाम पर वर्तमान के परिणाम, भविष्य के परिणाम का आरोप कर दिया। वो चर्चा 8 कथा और उनका जो मेन विषय है वो रात्रि काल में।